konuşalım.
O bir şey.
Parmağını yap. Diyor bak yahu iyi mi diyor. Böyle hero के महलों में होंगे सुख के अति ब्रह्मा, वहां हीरो के महलों में है और यहाँ हीरे तुल्य
जीवन
जीवन है। वहां सुख के भरमा रहे, यहाँ अतीन्द्रिय सुख के भरमा रहे। इस युग को वरदान है, बाबा ने आज कहा युग समाप्त तो
वरदान समाप्त,
वरदान समाप्त। वरदान जो है ये टाइम डिपेंडेंट है, इस समय को वरदान है। स्कीम लिमिट ऑफर फिल, ये ऑफर केवल ऑफर लिमिटेड, बस इसके बाद नहीं मिलेगा।
सीजन भी होता है,
सीजन तो
सीजन समय ऑफर,
इस युग को ही वरदान है। बाबा ने आज कहा युग समाप्त तो वरदान समाप्त। तो जो वरदानी युग है और जो वरदानी समय है, जो अलौकिक समय है, तो उसमें बाबा को क्या पसंद नहीं है? मेहनत। बाबा ने कहा मेहनत से छूट जाओ, सहज पुरुषार्थ हो। कैसे हो सहज? बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं है मेहनत, सहज। जिस तरह गुलाब पौधे में सहज आता है, जिस तरह बादलों से बारिश सहज गिरती है, जिस तरह पक्षी सहज गाते हैं, जिस तरह सूर्योदय सूर्यास्त सहज होता है, सब कुछ प्रकृति में उस तरह सहज हमारा पुरुषार्थ हो। कुछ भी हम जो स्वभाव है इसको इसके विरोध में अगर कुछ कर रहे हैं तो वहाँ उपद्रव है। वो हमारे उपद्रव के वजह से ही पुरुषार्थ सहज नहीं है। हम कुछ तो कर रहे हैं जो कि नहीं करना है, उस कुछ करने से ही सहज नहीं हो रहा, क्योंकि सहज योग सहज ध्यान। संसार में कई प्रकार के ध्यान है, पर बाबा ने जो ध्यान सिखाया है उसको, वो वास्तव में सहज योग है। केवल बैठा बैठा नहीं, सहज ध्यान की अवस्था अर्थात निरंतर एक अवेयरनेस में जीना, अवेयरनेस एक होश की अवस्था, संपूर्ण होश संपूर्ण अवस्था, अमूर्छा की अवस्था, ये ही योग है। निरंतर एक जागरण, निरंतर एक क्या कहेंगे जिसको, जागरूकता हो अंदर, बस ये जागृति ही योग है। अगर वो वहां बैठे, उसका इससे कोई संबंध नहीं है कि बैठ रहे हैं कि चल रहे हैं, फिर क्या कर रहे, वो एक स्मृति है बस। होश में जितना आदमी जो होश में है उससे गलतियां नहीं होगी, होश में गलतियां नहीं होती, बेहोश जब होते तब गलतियां होती। तो हमारे पुरुषार्थ में क्या क्या गलती है उसकी एक लिस्ट बनाना, पुरुषार्थ में गलतियां कहाँ कहाँ, कौन सा पुरुषार्थ हम कर रहे जो कि वही बाधा है, पुरुषार्थ की गलती है। एक है कर्म की गलती है, एक है पुरुषार्थ में क्या गलती है। अच्छा अपन बहुत बड़ा शब्द है, उसमें भी और कहाँ 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 क्या क्या है। तो जितना जो जागृत है सबके प्रति जागृत, हमारी जो गलती है उनके प्रति जागृत, हमारे में जो दोष है जो कमी है जो कमजोरी है उनके प्रति अवेयरनेस, संपूर्ण अवेयरनेस। उसको मिटाने की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, खाली होश, खाली एक जागरण की अवस्था, खाली वो पता रहना चाहिए कि मुझ में ये है, और उसको गहराई से जानना कि ये दोष है। तो वो जो अवेयरनेस है उसी को एक दिन स्वतः ही खत्म कर देगा उसको। और जब अवेयरनेस ज्यादा बढ़ती है तो हम शांत नहीं बैठते। जैसे अगर किसी को ये पता चल जाए कि उसको कैंसर है, अभी पूरी टेस्ट नहीं हुई है, खाली थोड़ा सा बता दिया कि कैंसर जैसा लग रहा है, तो शांति से बैठेगा क्या एक जगह कि जाएगा इसको उसको दिखाने? नहीं बैठ सकता, और टेस्ट करेगा और जानेगा कंफर्म करेगा, और फिर फाइनल पता चल जाए कि भाई कैंसर ही है तो तुरंत ट्रीटमेंट भी कराएगा, शांति से नहीं बैठेगा। हमारे अंदर कोई गलती है, कोई दोष है, कोई त्रुटि है, हमको उसको संपूर्ण रीति से जानना है कि ये है, और उस अवेयरनेस के साथ चलना है कि ये है, तो ये धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। किसी को अगर पैर में फोड़ा हो गया, शांति से तो नहीं बैठेगा, कुछ तो करेगा उसका। पर ये पता तो चलना चाहिए कि है, एक है कि भूले रहना कि है ही नहीं, वो नहीं, अवेयर नहीं। कुछ बीमारी अंदर की होती है, ये उदाहरण के लिए कहा केवल स्थूल। तो स्थूल जैसे कोई एक अंदर की बीमारी मतलब
अंदर भी कुछ निकले तो
हाँ मतलब उसको है, ये तो हम मानसिक स्तर पर बात कर रहे हैं, शरीर का हम उदाहरण दे रहे केवल। हाँ मानसिक, मानसिक के लिए, मानसिक की ही बीमारियों की जड़ तक पहुंचना है, उसके लिए हमको उसका केवल ऊपर ऊपर का रूप जानना पर्याप्त नहीं है। मतलब एक को पता है कि भाई मेरे में आलस्य है, उसको पता है, पर ये कहाँ है, क्यों है, कैसे है, उसका क्या स्वरूप है, उसका क्या रूप है, वो कौन सी चीज है जो मुझे अमृत वेला शक्तिशाली नहीं करने देता, उसकी संपूर्ण अवेयरनेस। अभी जो पता है वो तो बहुत अच्छी बात है, पर उसको और गहराई से जानना है, डिटेल इन डिटेल उसको संपूर्ण रीति से जानना है। ऐसा कोई रहता नहीं है कि जिसको कुछ पता नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि हम जो है कम प्रकाश से ज्यादा प्रकाश की ओर जाते हैं, एकदम अंधकार से प्रकाश की ओर नहीं, अंधकार में तो कोई नहीं है ब्राह्मण, कम प्रकाश में, कम प्रकाश से ज्यादा प्रकाश के, लेसर लाइट टू ग्रेटर लाइट। तो ये जो बात है कि जो एक ऐसे योग की एक ऐसी अवस्था हो कि जिसमें निरंतर जागरण हो, निरंतर एक होश की अवस्था, निरंतर एक स्मृति हो कि मैं कौन, कहां से आई, मुझे क्या करना। भक्ति में कहते हैं तीन चीजें हमेशा याद रखो। सबसे पहली चीज यह जो जीवन है, जीवन की क्षणभंगुरता, जीवन की क्षण, ये तीन चीजों का निरंतर चिंतन करते रहेंगे तो निरंतर वैराग्य की अवस्था रहेगी। जीवन की क्षणभंगुरता मतलब अल्पकाल है सब कुछ यहाँ पर। दूसरा शरीर की नश्वरता, शरीर नश्वर है, अविनाशी नहीं है। और तीसरा इस संसार की असारता। ये तीन बातें हैं, इनका अगर निरंतर चिंतन होते रहे, क्योंकि हमको इन तीनों में कहीं ना कहीं आसक्ति उत्पन्न होती है, हमको बार बार लगने लगता है कि ये संसार में बहुत सार है, पर ये चिंतन कि इस संसार में सार नहीं है, ये संसार असार है, ये चिंतन भूल जाता है सेवाओं करते करते। आज बाबा ने वरदान में कहा ना, सेवाओं के विस्तार में होते हुए ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप सार में स्थित रहना, सेवाओं के विस्तार में रहते हुए ज्ञान स्वरूप स्थिति में रहना। तो ये जो है विस्तार, इसमें संसार हमको बहुत सार युक्त लगने लगता है, तो संसार की असारता। दूसरा शरीर की नश्वरता, सबसे ज्यादा आकर्षण देह से है, सबसे ज्यादा आकर्षण आत्मा को देह से ही है, शरीर की ओर आकर्षित होना, शरीर में मोह रहना, स्वयं का शरीर या दूसरे का शरीर। ज्यादा से ज्यादा यहां तो होता है किसी एक स्त्री से वैराग्य हो जाएगा, एक स्त्री से, पर एक स्त्री से वैराग्य होना पर्याप्त नहीं है, वो सामान्य घटना है। सभी स्त्रियों से वैराग्य हो जाना यह असामान्य घटना, एक पुरुष से वैराग्य आ जाना ये तो बहुत सामान्य घटना, एक पुरुष से वैराग्य आ गया दूसरे पुरुष की तरफ बुद्धि जाएगी, ये ठीक नहीं है, इसका स्वभाव ऐसा है वैसा है, पहले अच्छा लगता था अभी अच्छा नहीं लगता, तो वो एक से दूसरी तरफ जाना हुआ। यहाँ सभी पुरुषों से वैराग्य उत्पन्न हो जाए किसी स्त्री को तो वो एक असामान्य की घटना है। शरीर की नश्वरता का चिंतन, शरीर खत्म होने वाला, शरीर के वास्तविक स्वरूप का चिंतन, शरीर में क्या है अंदर, शरीर का चिंतन करना है तो उसके वास्तविक स्वरूप का चिंतन करो, क्या क्या है इसमें, सारे कीटाणु भरे है इसमें, सारे रोग है इसमें, बीमारियां है इतनी सारी, इसमें वृद्धावस्था आएगी, यही मृत्यु को प्राप्त होने वाला शरीर है, ये समोप्रधान है, विकारी है, पतित है, केवल ये इतना भी पर्याप्त नहीं है, इसको जलता हुआ देखना ये अभ्यास, खत्म होते हुए देखना ये अभ्यास, कोई भी साथ नहीं आएगा। अपना शरीर जलते हुए देखना फिर भी आसान है, जो मित्र संबंधी है एकदम नजदीक के उनकी मृत्यु देखना ये कठिन काम है, बड़ा डिफिकल्ट काम है। थोड़ा सच्चा मृत्यु का बोध उसी आत्मा को होता है कि जिसके एकदम स्वजन, स्वजनों की जिसने मृत्यु देखी, एकदम लंबा समय जिनके साथ रहा और उनकी मृत्यु हो गई, उसको देखना थोड़ा कठिन था। तो शरीर की नश्वरता और जीवन की क्षणभंगुरता, जीवन में सब कुछ क्षणभंगुर, और ये क्षणभंगुरता ही एक्चुअली उसके आकर्षण का कारण भी है, ये विरोधाभास है, क्योंकि ये क्षणभंगुर है इसके लिए ही ज्यादा आकर्षण है। जो सुंदर है उसमें आकर्षण ज्यादा है, क्यों? क्योंकि वो एक दिन कुरूप बनने वाला है, पर जो कुरूप है ही उसमें आकर्षण कम है, क्योंकि कुरूप कुरूप ही रहने वाला है। जो स्थाई है, जो चिरस्थाई है, अविनाशी है, उसमें आकर्षण एक्चुअली कम रहता है, और जो एकदम फूल है अभी खिला हुआ है उसमें आकर्षण ज्यादा है, क्योंकि वो मुरझाने वाला है। तो ये संसार में भी एक्चुअली जो संसार क्षणभंगुर है, ये क्षणभंगुर ही उसके आकर्षण का एक कारण है। ये बड़ा एक सूक्ष्म रहस्य है। हम सोचते हैं संसार क्षणभंगुर है, इसे तो वैराग आ जाना चाहिए, पर एक्चुअली ये क्षणभंगुरता ही उसके आकर्षण का कारण है। तो बार बार इन चीजों का स्मरण करना, असारता का, क्षणभंगुरता का, नश्वरता का, तो मन में वैराग स्थिति रहेगी, निरंतर वैराग। हाँ, वही वो तो एक अलग रीति से कहता है, बाबा ये शरीर भले नश्वर है पर तुम्हारा ये अमूल्य जन्म है। बड़े भाग मानुष तन पावा, ये जो तन जो भक्ति में गाते हैं ना, भक्ति में क्या कहते हैं, कई जन्मों में पशुओं के जन्म योनियों में जाते हैं और फिर अंत में मनुष्य तन मिलता है। अभी इसी तन में बैठ के यात देही यात जन्मी, मतलब इसी जन्म में इसी देह में उसका साक्षात्कार करना, तो ये जो अवस्था है भक्ति में भी ये शरीर महत्वपूर्ण है। और भावा ज्ञान के रीति से इस तरह कहते हैं क्योंकि कई जन्मों के बाद इस तन में भगवान मिला, इसके लिए इस तन का भी महत्व। तो जो सतयुग में क्या कहा गीत में, वहां सुख अपार और यहाँ अतिंद्रिय सुख, वहां सुखों की भरमार या अतिंद्रिय सुखों की भरमार, वहां बाबा साथ नहीं है, बाबा साथ है। तो इस युग को वरदान है, युग समाप्त तो वरदान भी समाप्त। चलो आज क्या कहा फिर बाबा ने, शिव अवतरण, शिव जयंती। शुरुआत बाबा ने कहा से कि शिव बच्चों को खुशी होती है, कई बच्चे हर्षित है और दूसरी तरफ उत्साह में भी है, क्यों? क्योंकि सेवा का उमंग उत्साह है। कौन सी सेवा? बाप को प्रत्यक्ष करने। तो बाबा ने यहाँ पे वो सारी बातें बताई है अवतरण से संबंधित, बहुत सारी बातें, भगवान का आना वो कैसा है, क्या क्या बातें, पांच छह बातें है फर्स्ट पैराग्राफ। बाबा सबसे दूर से कौन आता है? तो मैं सबसे दूर देश से आता हूँ, एक मुझे समय नहीं लगता है, उसको समय नहीं लगता। दो, तीसरा प्लेन ट्रेन से नहीं आता है, रथ से आता है, रथ में तो ज्यादा टाइम लगना चाहिए। बाबा दूर से आना, उसका रथ लेके आना, तीसरा समय नहीं लगता, ये उसका एक आना, एक बात ये ए वन पॉइंट। और क्या बोला? वो आकर यज्ञ रचते है, अकेले कुछ नहीं करते, पहले तो ब्रह्मा को रचते, फिर ब्राह्मणों को रचते। हाँ, वो दूसरा पॉइंट है, एक तो पहले यज्ञ रचते और अकेले नहीं आते, ब्रह्मा आदि आदि ब्रह्मा ब्राह्मण सब साथ में, फिर क्या
जन्म
एक साथ जन्म। उसको अपना नशा है कि ऐसा कोई बाप नहीं दुनिया में जिसका ऐसा जन्म है। जन्म के लिए भी क्या कहा बाबा ने, अलौकिक और दिव्य जन्म, ना किसी का हुआ ना होगा। तुम साकार तन में आते, परकाया तन, परकाया प्रवेश करने वाला एक ही, आज तक ऐसा जन्म किसी और का नहीं हुआ। हमारी जो अभी शिवरात्रि का कोई पाम्पलेट है उसमें एक बहुत अच्छी स्टोरी आई है शिवरात्रि के बारे में, किसी ने लिखा है, मतलब परकाया प्रवेश के बारे में। 20वीं शताब्दी में एक प्रयोग किया गया था, क्योंकि महात्मा बुद्ध जब निर्वाण जाने से पहले उन्होंने कहा था कि मैं वापस आऊंगा मैत्रेय नाम से मैं वापस आऊंगा। तो 20वीं शताब्दी में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी, उसकी जो कर्णधार है एनी बसंत, उसको ऐसे दिव्य साक्षात्कार हुए कि वो मैत्री जो है बुद्ध की आत्मा किसी एक शरीर को ढूंढ रही है वापस प्रवेश करने के लिए। उसको ऐसे दिव्य साक्षात्कार हुए, अनुभव हुए 20वीं शताब्दी में, और उसने ढूंढना चालू किया, पर उस जो मैत्री, जो बुद्ध की जो आत्मा है, जो मैत्री रूप से आने वाली है, उसको कोई ऐसा शरीर मिल नहीं रहा है, क्योंकि वो इतनी शक्तिशाली आत्मा है कि किस तन में प्रवेश करेगी। तो उसने जैसे उसको अंतर से प्रेरणाएं हुई बहुत सारी, तो उसने बस लोगों को ढूंढना चालू किया। उसको दो लोग मिले, कौन से? जय कृष्णमूर्ति, जिड्डू कृष्णमूर्ति और उसका भाई। तो उसने दोनों को लिया और उनके ऊपर बहुत सारे प्रयोग चालू किए करने, अभ्यास उनको तैयार किया जैसे। पर उसमें एक शर्त थी, वो बुद्ध की आत्मा ऐसे ही तन में आएगी जिसमें कोई इच्छा ना हो, जिसने अपना अहंकार विसर्जित कर दिया हो, संपूर्ण त्याग भावना हो और जिसमें बिल्कुल अहंकार ना हो। तो उसने इन दोनों भाइयों को तैयार किया, पर प्रयोग के दौरान जो छोटा भाई था या बड़ा या छोटा भाई जो था उसका, वो उसकी मृत्यु हो गई, एक ही बचा जय कृष्णमूर्ति। तो ये फिर वो पूरा तैयार हो गया और वो उसको लेके फिर लंदन गई। फिर लंदन में घोषणा की कि अभी मैत्री बुद्ध की आत्मा इनमें प्रवेश करेगी, ये डेट और ये तारीख पूरा। और पूरा कितने दिन दुनिया भर से विख्यात लोग वहां आ गए। पर जैसे उस समय पर ही जैसे कि वो कृष्णमूर्ति ने जैसे एक तरह से वो कहते विद्रोह कर दिया, उसने अस्वीकार कर दिया कि मैं नहीं लूंगा बुद्ध की आत्मा को अपने शरीर में। तो ये बहुत झटका बैठा। उसके बाद से ये जो सोसाइटी है थियोसॉफिकल सोसाइटी, थोड़ी कम हो गया उसका सब कुछ प्रभाव। बहुत स्कैंडल इस तरह से हुआ। तो वो जो था ना, वो परकाय प्रवेश की बात थी। तो बाबा ने आज कहा ना, ऐसा कोई ना हुआ ना होगा। मेरा जैसा जन्म है और किसी का ऐसा जन्म नहीं है किसी और के तन में प्रवेश करना, ये जो जन्म। फिर उस आर्टिकल में बहुत अच्छी बात लिखी है कि अगर बाबा अगर गर्भ में प्रवेश करता, ठीक है, एक सोचा है किसी ने कि गर्भ में प्रवेश करता तो आते ही तुरंत तो ज्ञान नहीं सुनानी सुनाना चालू करता ना, थोड़ा टाइम तो लगता है, उसमें टाइम वेस्ट हो जाता फिर बाबा का, 25 साल तो उसको बड़े होने में लगता है। जैसे रामायण और महाभारत इसमें दिखाया है ना, रावण के अत्याचार बढ़ते गए, देवता गए विष्णु के पास, त्राहिमाम रक्षा करो रावण से। तो विष्णु ने कहा ओके, तो विष्णु फिर राम अवतार धारण किए, राम अवतार हुआ, फिर गर्भ में गया, फिर बड़ा हुआ, बड़े होने के बाद वनवास में गए, तब तक रावण के अत्याचार चालू है। वो गए कब थे देवता रावण के पास, विष्णु के पास? बहुत पहले। ये तो बड़ा हुआ, फिर वनवास गया, फिर 13 साल रहा, फिर उसके बाद में कहीं रावण का अंत हुआ। अगर बाबा के पास भी आत्मा आ गई तो बाबा कहता ठीक है अभी मैं जन्म लेता हूँ, फिर वो बड़ा होगा। तो तुरंत भी तो 25 साल चलो ले लिया, अभी बूढ़ जवान शरीर की आत्मा डायरेक्ट बूढ़ों को तो ज्ञान सुनाना नहीं चालू करेगी ना। तो इसके लिए उसने ऐसा तन लिया कि जो पहले से तैयार है। पर काया प्रवेश आवागमन के चक्र में वो आना, ये नियम ही नहीं। वो आवागमन के चक्र में नहीं आता। आवागमन अर्थात आना और जाना। जो आत्मा इसको भव सागर कहते हैं भक्ति में, ये भव सागर है। तो शिव अवतरण की और क्या विशेषता बताई आज बाबा ने? ये अलौकिक है, ये दिव्य जन्म है। वाह 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 कहा ना, वाह। ये हीरे तुल्य जन्म है। हाँ, यही मना है। और उसका जन्म भी कैसा है? न्यारा है। और बच्चों का भी न्यारा और प्यारा है। तो ये भी एक विशेषता है शिव अवतरण। न्यारा और प्यारा, तो बच्चों का न्यारा। तो ये सारी विशेषता है किसकी? भगवान के आने की। वो किस तरह आता है और कैसे आता है और क्या करता है यहाँ पर? दिव्य अलौकिक जन्म कर्म च दिव्य च। गीता में एक श्लोक है, हे अर्जुन मेरा जन्म और मेरे कर्म दोनों दिव्य है। जन्म भी दिव्य है, मैं प्रकृति को अधीन करके अवतरित करता हूँ, प्रकृति को वश में करके। और कर्म भी दिव्य है, कर्म तो सारे दिव्य है उसके। तो ये थी बात कौन सी? अवतरण की। और क्या कहा उसी में? और भी कुछ है?
वर्गीकरण।
हाँ वो तो बात है, इसमें और अवतरण में और कुछ बात। परकाय प्रवेश के लिए और भी इसका भी दिखाते हैं शंकराचार्य का, कि उसकी भी आत्मा ने जैसे परकाय प्रवेश किया था। जब वो उसका डिबेट दिखाया ना मंडन मिश्र के साथ, बहुत डिबेट चलता है, बहुत डिबेट चलना, ये हारता है ना वो हारता है, बस अभी मंडल मिश्र हारने वाला रहता तो उसकी पत्नी आती बोलती अभी मैं तुमसे डिबेट करूंगी। और वो शंकराचार्य तो बाल ब्रह्मचारी और सन्यासी, उसको सब काम विकार से संबंधित प्रश्न पूछती है वो, तो
मंडल मिश्र की पत्नी।
पत्नी तो वो उसके लिए फिर क्या करता है शंकराचार्य, एक राजा के तन में प्रवेश करता है, अपने शरीर को रख देता है, अपने शिष्यों को कहता है इस शरीर को जरा देखभाल करो, तब तक वो राजा के शरीर में प्रवेश करता है ये सब जानने के लिए। और वो राजा तो इतना भोगी विलासी रहता है, और इसकी आत्मा जैसे उसमें आ जाती है एकदम वैरागी हो जाता है राजा, सबको आश्चर्य लगता है ये कौन है, ये कौन आ गया। तो बाद में वो मंडल मिश्र उसका शिष्य बन जाता है, ऐसे सब कहानी। तो वो भी एक परकाय प्रवेशी था, परकाय प्रवेश एक सिद्धि है, वो तो योगियों को प्राप्त थी, और यहाँ तो योगियों का ईश्वर है तो आ ही सकता है जो योगी योगेश्वर जो है तो उसके पास तो वो है ही है। तो बाबा ने ये शिव अवतरण के लिए कहा। फिर आगे सब बच्चों में एक संकल्प है, कौन सा, बाप समान बनने का, जल्दी से जल्दी बाप समान बनने का। और उनको नशा कौन सा है, निश्चय कौन सा है, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे, हम ही थे, हम ही है और हम ही बनेंगे। और फिर बाबा ने भारत और विदेश इन दोनों की सेवाओं के लिए हम ही बनेंगे। तो भारत के लिए, भारत का की सेवाओं में बाबा ने वर्गीकरण के लिए, और विदेश का रिट्रीट या डायलॉग, रिट्रीट या डायलॉग, तो दोनों ही सेवा बाबा ने कहा बाबा को पसंद है। भारत वालों को जितना समय मिला है उतना विदेश वालों को नहीं मिला है। जगदीश भाई को भी याद किया है, इन्वेंशन करने को कहा है, और फिर वर्गीकरण अर्थात क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, क्लासिफिकेशन कैटेगराइजेशन, हमारी जो विंग्स बनी, फिर विंग्स के तभी 80 कब बनी, 85 बनी, 98 की बनी, तो उससे विस्तार हुआ बहुत सारा उसके लिए बाबा ने कहा। उसके बाद में फिर सेवाओं के लिए कहा, कैसी सेवा करो, निस्वार्थ सच्चे दिल से अगर कोई सेवा करते तो क्या हो जाता है, पुण्य का खाता बढ़ जाता है, और तीन पुण्य के खाते बड़ा सुना है, कौन कौन से पुण्य के खाते,
सबसे पहले
का खाता एक, फिर दूसरा दुआए और तीसरा पुण्य। अभी दुआए कैसा, संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, और पुण्य के लिए कैसा, पुण्य के लिए क्या कहा, योगयुक्त और युक्तियुक्त सेवा का रिजल्ट पुण्य का खाता। तो एक है दुआए, एक है पुण्य और एक है पुरुषार्थ। और जिसके पास ये तीनों ही खाता, जिसके पास ये तीनों ही जमा हो रहा है वो कैसा हो जाएगा, सहज पुरुषार्थी होगा, और दूसरे के लिए भी क्या हो जाएगा, सहज पुरुषार्थी का प्रेरणा हो जाएगा, और वो स्वयं सिंबल होगा, कौन सा, सहज पुरुषार्थ का सिंबल। फिर बाबा ने और भी एक चीज कही वहां पर, अगर जिसको बाप से परिवार से मोहब्बत है, सेवा से मोहब्बत है, तो मेहनत से स्वतः अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाएगा। तो इसमें ये जो स्पिरिचुअल अकाउंट बताया बाबा ने, खाता स्पिरिचुअल अकाउंट है नहीं, सबसे पहला तीन खाते हमारे पास होने चाहिए, जिसके पास जितने ज्यादा उतना उसका पुरुषार्थ सहज। सबसे पहला खाता पुरुषार्थ की प्रारब्ध, दो शब्द, एक प्रारब्ध है एक प्रारब्ध है, हिंदी में ऐसे दो शब्द आते हैं प्रारब्ध और प्रारब्ध, एक ही अर्थ है लगभग दोनों का, फर्क ज्यादा नहीं है उसका। एक अर्थ तो भाग्य होता है, डेस्टिनी, फेट, ये भी होता है, पर बाबा जिस रीति से कहते हैं वो अवार्ड, इंग्लिश ट्रांसलेशन जो आता है ना, जब यहाँ की प्रारब्ध तुमको वहां मिलेगी, मतलब इसका क्या कहते हैं उसको, रिवॉर्ड जो है, इनाम, वो वहां मिलेगा। प्रारब्ध शब्द बाबा इनाम के लिए यूज करते हैं, भक्ति में यह शब्द किसी और चीज के लिए, प्रारब्ध अर्थात भाग्य के लिए यूज किया जाता है। प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध कर्म वो अलग रीति से यूज करते हैं बाबा, अलग रीति से यूज करते हैं।
एक स्लोगन भी है ना, व्यर्थ को अवॉइड करो, अवॉइड करो तो अवॉर्ड मिलेगा।
हाँ, वो दूसरा। तो सबसे पहले पुरुषार्थ की प्रारब्ध, पुरुषार्थ की रिजल्ट, दूसरा स्वयं संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, उससे क्या मिलेगी,
दुआएं।
कौन दूसरों को संतुष्ट कर सकता है, जिसमें स्वयं संतुष्ट जो है, स्वयं संतुष्ट कौन रह सकता है, जो भरपूर है, भरपूर कौन है,
श्रेष्ठ पुरुषार्थ ही,
जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ है, जो अपनी पुरुषार्थ से जो पुरुषार्थ वो कर रहा है उसमें उसके अंदर एक संतुष्टता का भाव है। मतलब यहाँ संतुष्ट अर्थात पुरुषार्थ के लिए नहीं, पर संसार की कोई चीज नहीं चाहिए, मांग नहीं है, ये जो मांग है वो खत्म हो गई है, इच्छाएं जो है वो कम से कम मिनिमाइज हो गई, बहुत कम हो गई है। मतलब मांग में भी प्रेम की मांग, सहानुभूति की मांग, सांत्वना की मांग, किसी कोई हमारी केयर करे, ये मांग, वो तो बाकी जो मांग है नाम मान शान और धन और संपत्ति और वो तो एक तरफ, ये वो तो है ही, वो तो उससे तो मुक्त है ही, पर ये जो सूक्ष्म मांग है आत्मा की कि आत्मा को कोई चाहिए, एक कंधा चाहिए रख कर रोने के लिए, चाहिए ना कोई मिल जाए और उसको अपने सुख दुख बताए, ऐसा चाहिए हर एक को। ये जो मांग है अंदर से, ये दबाने से तो और बढ़ती है, उसमें इतना भर देना है कि वो जैसे उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। परमात्मा प्रेम जितना अंदर भरता जाएगा, ये संसार की आत्माओं से जो एक चाहिए चाहिए, इससे चाहिए उससे चाहिए, वो सब हट जाएगा, तो वो होगा श्रेष्ठ पुरुषार्थ। तो श्रेष्ठ पुरुषार्थ बहुत अच्छा योग और बहुत अच्छा चिंतन से, आत्मा ज्ञान चिंतन से जितनी जितनी भरपूर होती जाएगी, उसकी ये सब छोटी मोटी इच्छाएं स्वतः ही समाप्त होती जाती है, स्वतः ही सहज। और जितना योग शक्तिशाली होते जाता है, और योग में अशरीरीपन का जितना अनुभव होते जाता है, ज्यादा से ज्यादा अशरीरीपन के अनुभव, फिर देह की आकर्षण आप ही कम हो सकती है। तो देह के आकर्षण को मुक्त होने के लिए साधु संन्यासियों ने द्वापर युग से कितने प्रयोग किए, कितने उपाय किए, कितना शरीर को दुख दिया और क्या कुछ नहीं किया, फिर भी शरीर का आकर्षण से मुक्त हो ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि अशरीरीपन का अभ्यास चाहिए। कुछ कुछ अच्छे योगी जो है उन्होंने किया, परंतु मैक्सिमम नहीं कर पाए, क्योंकि हमारा ये जो ज्ञान चर्चा जो हो रही है ये इसका एप्लीकेशन एक्चुअली योग में करना है। ये कर क्यों रहे हैं? ज्ञान चर्चा भी इसलिए कि ताकि योग में इसका प्रयोग हो सके, और योग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसका एप्लीकेशन इधर हो सके, दिन भर में ज्ञान जिसका एप्लीकेशन योग में, योग का एप्लीकेशन दिन भर में या ज्ञान में। तो अशरीरीपन का जिसको बहुत अच्छा अनुभव है, अतीन्द्रिय सुख जिसको बहुत जिसके पास है, वो भरपूर हो गया था। शक्तियां जहाँ काम करती है वो भरपूर हो गया था। तो जहाँ भरपूरता है वहां संपन्नता है, वहां संतुष्टता है। जो स्वयं संतुष्ट है वही दूसरों को संतुष्ट कर सकता है, और जो दूसरों को संतुष्ट करेगा उसको ही फिर दुआएं मिलेगी, दुआओं का खाता जमा होगा। एक तो दुआ है, फिर भोला बाबा ने कौन सा पुण्य, ये दोनों हमारे खजाने, दुआएं और पुण्य। पुण्य कैसे होंगे? योग युक्त, युक्ति युक्त सेवा की रिजल्ट। जितने हमारे कर्म या सेवा योग युक्त होगी और युक्ति युक्त होगी, उतना ही पुण्य जमा होगा। सेवाएं कर रहे हैं परंतु योग की अवस्था नहीं है उन सेवाओं में, तो पुण्य कम है। दो आत्माएं सेवा कर रही है, सिमिलर सेवा कर रही है, फिर भी हो सकता है ये भी प्रदर्शनी समझा रहा है, ये भी प्रदर्शनी समझा रहा है, ये भी मेले में सेवा कर रहा है, ये भी मेले में सेवा कर रहा है, ये भी किचन में सेवा कर रहा है, ये भी किचन में सेवा कर रहा है, परंतु फिर भी दोनों का पुण्य अलग अलग, क्योंकि आंतरिक किस भावना से कर रहे हैं, समर्पण भाव कितना है दोनों में, योग की अवस्था क्या है दोनों की। एक अमृत वेला बिल्कुल कभी करता नहीं, एक करता है, पर सेवाएं दोनों की सेम है, सेम टू सेम सेवा करते, रिजल्ट भी सेवाओं के आधार से अगर देखा जाए तो सेम है, बिल्कुल वैसी, परंतु फिर भी पुण्य किसी एक आत्मा का जन्म है। किस आधार से? निमित्त भाव है, समर्पण भाव है,
सच्ची दिल है,
बाबा से कनेक्शन है बीच बीच में। ऐसे नहीं कि बस सेवा कर रहे तो सेवा में इतना लग गए कि बाप ही भूल गए, जिसकी सेवा कर रहे हैं उसी को भूल रहे, तो वो अवस्था ना हो। तो ऐसे अगर कर्म हो तो कौन सा खाता जमा होगा? पुण्य। तो पुण्य का खाता, दुआओं का खाता, पुरुषार्थ की तालब, ये तीन खाते जिसके पास है वो सहज पुरुषार्थी हो, जो सहज पुरुषार्थी हो दूसरों को भी सहज पुरुषार्थी की प्रेरणा दे सकता है, और खुद सहज पुरुषार्थ का सिंबल बन सकता है, एक प्रतीक बन जाएगा वो। और फिर बाबा ने वो मेहनत से, ये तो हो गया, फिर ये बाप से प्यार, परिवार से प्यार, और किससे प्यार का? यज्ञ सेवा से प्यार, ये तीनों प्यार रहेंगे तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। ये अभी बाबा की, ये तो हो गए सेकंड, अभी थर्ड बाबा की आशा है कौन सी, नहीं कौन, और उसके भी पहले कि सभी बाप समान बन जाए, नहीं सभी मेहनत से मुक्त हो जाए, क्योंकि यही पे कहा ना युग समाप्त हो, समय समाप्त हो, युग समाप्त हो, वरदान समाप्त, तो सभी मेहनत से मुक्त हो जाए, ये बाप दादा की श्रेष्ठ आशा है, ये आशा है बाबा की। उसने फिर बाबा ने कहा चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, नहीं वो कोई बड़ी परिस्थिति या बड़ी समस्या आ जाए तो उसमें ऐसे पार कर दे जैसे माखन से बाल निकल जाए। समस्या बड़ी समस्या या बड़ी कार्य,
कार्य
कितना भी बड़ा से बड़ा कार्य, कितनी बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए और उसमें ऐसा पार कर जाओ जैसे कि माखन से बाल। फिर उसमें बहुत सारी चीजें बताई बाबा ने, क्या क्या ना हो, तुम्हारा चेहरा कैसा ना हो, चिड़चिड़ापन भी बताया, कार्य या समस्या के आधार से लकीर ना आए चेहरे पर, मूड ऑफ के चिन्ह ना हो, थकावट ना हो, चिड़चिड़ापन ना हो, लहर, ये सारी चीजें, लकीर नहीं लहर सॉरी, ऐसी सारी चीजें ना हो तुम्हारे चेहरे पर। फिर क्या हो चेहरे पर, फिर वो सारी बताया, मुस्कुराता हुआ सबको पसंद है, बाप दादा को भी पसंद है और सबको भी पसंद है। और एक चीज कही, तुम मास तुम कौन हो, विघ्न विनाशक हो, टाइटल ही विघ्न विनाशक है और विघ्न ना आए तो क्या कहेंगे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। विघ्न विनाशक के पास जो बहुत सारे विघ्न पार करेंगे तभी तो नाम पड़ेगा ना विघ्न विनाशक, बैठे बैठे केवल सोमान में बैठने से विघ्न विनाशक नाम तो नहीं होगा, विघ्न तो आएंगे ना, जिसके पास जितने चैंपियन है विघ्नों का, यूनिवर्सिटी ऑफ हार्ड नॉक इंग्लिश में ऐसा कहते हैं, वो किसी को पूछा भाई तुमने कहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो कहता है यूनिवर्सिटी ऑफ हार्ड नॉक्स, नॉक्स मतलब धक्के, वो यूनिवर्सिटी से किया है तो इतने धक्के खाए हैं कि एकदम अभी पोस्ट ग्रेजुएट है वहां से, यूनिवर्सिटी ऑफ हार्ड नॉक्स। और कोई है चुनौती देता है सबको, है कोई तो आ जाओ है तो आ जाओ लड़ने के लिए, उसको तो ऐसा थोड़ी ना होता, उसको डर थोड़ी लगता है, उसको तो लगता है और आए और आए, जितने ज्यादा विघ्न आएंगे और बड़े बड़े विघ्न आएंगे उतना मैं उसको लड़ूंगा और शक्तिशाली बनाऊंगा,
बड़े इनाम भी,
और बड़े इनाम भी उसको चाहिए, उसको तो ये रहता है ना मुझे ही सारे इनाम मिलने चाहिए, नशा होता है उसको अपना,
नाम भी बढ़ जाता है,
हाँ उसका नाम भी बढ़ जाता है। तो वो तो स्थूल, ये है जीवन के विघ्न, यूनिवर्सिटी है ये भी, यूनिवर्सिटी ऑफ हार्ड नॉक्स। तो हाँ, तो चेहरा कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, एक तो चिड़चिड़ा, उसमें कोई लहर दुख की या बड़ी समस्या बड़ी कार्य की, बदलना, बदलने के चिन्ह, थकावट, हाँ बाबा ने ये कैसे होगा, कैसे प्रश्न पूछा ना, कैसे, फिर उसका उदाहरण दिया ये ऐसे जैसे वो तुम्हारे चैत तुम्हारे जड़ मूर्ति भी मुस्कुराते रहते हैं, वहां जाके उमंग उत्साह में रहते और चैतन्य में भारी हो जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे,
सोचते हैं कि बोलूं कि नहीं बोलूं,
बोलूं कि नहीं बोलूं, ऐसे कोई भारी होता है तो तो चैतन्य मुस्कुराता हुआ चित्र है, हाँ वो भी एक बहुत अच्छी बात होती है, कोई भी समय चाहे अचानक, चाहे एक मास का बच्चा है या दो मास का बच्चा, पर अचानक कोई तुम्हारे चेहरे का फोटो निकाला तो वैसा ही होना चाहिए जैसे सुनाया, अभी कैसे सुनाया, सबसे पहला कैसा चेहरा होना चाहिए, फरिश्ता, वरदानी, दाता, रहम दिल, अहक, अथक, सहज पुरुषार्थी या सहज योगी, ये और भी बताएं, शक्तिशाली, मुस्कुराता हुआ, शीतल, गंभीर और रमणीकता का बैलेंस, ये सारी बातें, इतनी सारी, अभी इसमें से बाबा ने थोड़ा विस्तार किया है अथक इसका, रहम दिल का और दाता का, ये दो चीजों का बस विस्तार किया, दाता अर्थात देने वाला, दाता अर्थात, दाता अर्थात ये इधर है देने वाला, चाहे तुमको कोई बुरा दे, अगर बुरा दे तो क्या करो, वो स्वीकार ना करो, नहीं कोई अगर तुमको बुरा दे तो उस बुरे को स्वीकार ना करो, उसे और ही स्नेह दो, सहयोग दो, शक्ति दो, अपनी एक्स्ट्रा, ऐसी आत्मा को एक्स्ट्रा स्नेह दो, अतिरिक्त स्नेह दो अलग से, और अपनी स्थिति की द्वारा गुणों की गिफ्ट दो। ये दातापन के लिए कहा, रहम दिल बनो, रहम दिल बनो वहां पर। तो एक तो रहम, रहम दिल का थोड़ा विस्तार किया बाबा ने, दातापन का विस्तार किया। और कौन सी दो बातें, एक है फरिश्ता, वो कहां पर हो उसका विस्तार नहीं किया, पर तुम्हारा चेहरा कैसा हो, फरिश्ता, वरदानी, दाता, रहम दिल, अथक, अथक, तुम्हारे चेहरे पर थकावट ना दिखाई दे। वो भी उसमें भी पूछा ना, क्यों भाई चेहरा ऐसा क्यों है, तो क्या कहते हैं,
नहीं
शक्ल
काम बहुत था,
ये भी है हमारे बचपन
का, काम ज्यादा था,
काम ज्यादा था, काम ज्यादा था, क्या करे काम बहुत है, ऐसे कहते हैं ना, ये ब्राह्मणों की भाषा है अच्छी, रॉयल, काम बहुत था इसके लिए ऐसे लग रहा है, थकान, थकान होती है ना, अगर बहुत उमंग उत्साह और बहुत ज्यादा आश्चर्य की अवस्था है अंदर तो थकान नहीं होती, अगर आत्मा मौन में सेवा कर रही है तो थकान नहीं होती, अगर बहुत आवाज करते हुए सेवा करती है जो आत्मा, सेवा दो आत्माएं कर रही है, एक कंटिन्यूस बोल रहा है दूसरा नहीं बोल रहा है, तो जो न बोलने वाला है जिसकी मौन की अवस्था है अंदर से, शांत, मौन और जागरण, ये तीन शब्द है सेवाओं में, मैं शांत हूं, मैं मौन हूं और मैं जागृत अवस्था में, होश में हूं, अमूर्छा, अवेयरनेस है कंटिन्यूस कि क्या कर रहा हूं, किसकी सेवा कर रहा हूं, ये तीन अगर अवस्था है तो थकान नाम मात्र नहीं होती वहां पे, बाकी ये तीनों भी नहीं है, मौन भी नहीं है, जागरण, अब मौन ही नहीं है तो देहभान रहता है फिर वो जागरण, वो आत्मा, वो आत्मिक स्वरूप, वो सब कुछ नहीं रहता है वहां पे, वो खाली नाम मात्र सेवा रहती है। और तीसरा क्या कहा मैंने, मौन, जागरण और तीसरा शांत, और जो आत्मा कंटिन्यूअस बोलती रहती है उसका टकराव होता है फिर आत्माओं के साथ, क्योंकि मुख से हमेशा अच्छा ही नहीं निकलता है, कुछ तो कुछ निकलता ही है अवगुण देखने के बाद, उसका विरोध, ये सब होता है। तो ये जो अवस्था है वो नीचे की अवस्था है सर, देहभान की अवस्था है, हमारी जो अवस्था है वो ऊंची अवस्था होनी चाहिए। तो अथक कब बनेंगे, जब मौन में सेवा करेंगे, मौन कब करना है, सुबह योग में नहीं, योग में तो है ही, ये तो कोई संकल्प ही नहीं कि मैं आज कल सुबह 4 और 4:30 के बीच में कुछ बोलूंगा नहीं, ये कोई संकल्प करता है क्या, नहीं मैं दूसरा पूछ रहा हूँ, आप ये संकल्प कभी करते हो कि सुबह कल 4 और 4:30 के बीच में बिल्कुल मौन रहूंगा, है ही, तो जैसे वो संकल्प करने की जरूरत है तो वैसे ये भी सहज हो जाए, जब हो रहा है मतलब विरोध है अंदर, हम अगर कर रहे हैं द वेरी फैक्ट कि हम संकल्प करना पड़ रहा है कि आज ये दो घंटा में बिल्कुल मौन रहूंगा, मतलब अंदर से कोई है बैठा जो तैयार है बोलने के लिए और इस प्रतिज्ञा को तोड़ने के लिए, ये ऊपर से थोप रहे एक प्रतिज्ञा कि 2 घंटे बोलूंगा नहीं, अंदर से कह रहे हैं बोलना ही है पर तो ये जो सुबह ये जो अवस्था है ना, ये अवस्था हमारी सबसे पावरफुल अवस्था है कि जिसमें हमको संकल्प करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, प्रतिज्ञा करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, कोई व्रत नहीं ले रहे, कोई नियम नहीं बना रहे, स्वतः ही हो रहा है, ये है सहज योग। तो जैसे वो है वैसे दिन भी ऐसा ही हो कि सेवाओं में बीच बीच में मौन का अभ्यास कर, आगे कहा ना बाबा ने टॉप कहा, टॉप, मन बुद्धि कितना भी व्यस्त हो, कैसी भी बड़ी समस्या हो, पर स्टॉप कहा और स्टॉप, वो रहता ना स्टैचू कर देते ना, ये होता है ना बच्चे करते हैं स्टैचू, स्टैचू तो एकदम ऐसे रुक जाते, जो भी अवस्था में हो स्टैचू, जैसे जहां पे भी वो स्टैचू कर देते खेलते बचपन में, तो स्टैचू, स्टैचू होता चुप, स्टॉप, बिल्कुल हिलना नहीं, मन बुद्धि स्टॉप, हाँ पलके भी नहीं हिला, अगर वो हिल गए तो फिर वो फाइन, स्टैचू में बिल्कुल स्टैचू मतलब स्टैचू, तो स्टॉप, मन बुद्धि चाहे कितना भी व्यक्ति पर बीच बीच में ये अभ्यास करो, ये ड्रिल है समझने का, चाहे किसके पास कितना भी योग किया है, चाहे किसने कितनी भी सेवाएं की है, कुछ किया है, मेन यही है लास्ट में, पास विद ऑनर बनने का आधार ये है, बाकी छोड़ दो, कोई कहते मैंने ये किया वो किया ये क्या क्यों किया, कुछ काम का नहीं है, मेन ये है कि रूहानी अशरीर भी कितना फास्ट हो सकता है, 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा, देह से डिटैच होने में टाइम कितना लगा है, जब बीमारी आती है ना तो यही काम आता है, जब बहुत दर्द होता है, दादी दांकी को देखा हमने कितना दर्द पर वो उसको टॉलरेट कर रही है, क्यों क्यों कर पाती है टॉलरेट, क्योंकि उसका आश्चर्यपन का एकदम 80 साल का अभ्यास है, 80 साल की योगी है वो, अभ्यास ही काम आ रहा है, कोई दूसरा होता ना तो पता नहीं क्या हो जाता, वो पेन ऐसे सीवियर है बीच बीच में जो होता है, वो बीमारी के समय, मृत्यु के समय यह अभ्यास, यह अशरीरीपन का ही अभ्यास काम आएगा, बाकी कुछ काम नहीं आने वाला। हमने कितना ज्ञान सुनाया लोगों को, कितना पढ़ा, कितनी सेवाएं की, वो सब एक तरफ। अशरीरी अवस्था कितना फास्ट अशरीरी कौन बना, कितने कितना योग की क्या अवस्था थी, वही काम था, बाकी कुछ नहीं। फास्ट होने का आधार यही है। कितना टाइम लगा है? बाबा ने तो एक सेकंड कहा है उसमें, स्टॉप कहा और स्टॉप। ऐसी अवस्था, ये था अथक, फिर था वरदानी, परिष्ठा, अथक, दाता, रहम दिल और सहज योगी या सहज पुरुषार्थी। ये छह बातें हैं वहां पे। और फिर शक्तिशाली, मुस्कुराता हुआ, गंभीर और रमणीक। अब ये दो बातें, एक है गंभीरता, एक है रमणीकता। पुरुषार्थ किसका करना है? गंभीरता का। रमणीकता तो है ही इसमें रमणीकता का पुरुषार्थ नहीं है, प्यारा बनने का पुरुषार्थ है ही नहीं। पुरुषार्थ है न्यारा बनने का। जो गंभीर है वो स्वतः ही रमणीकता में, रमणीकता तो हम कर ही रहे है ही जैसे उसमें, उसके लिए ज्यादा पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है। बोलने दो गंभीर था एक बहुत अच्छा गुण,
तभी तो पूछ रहे हैं गंभीर तो रमणीक हो तो कौन पूछेगा।
गंभीर व्यक्ति जो है उसका ज्यादा महत्व रहता है, स्थूल रीति से भी देखा जाए। जो नहीं बोलता है ना उसको भले कुछ आता नहीं हो, पर लोग समझते हैं बहुत बुद्धिमान है।
गंभीरता भी, लेकिन मतलब
गंभीरता मतलब वो गंभीरता भी थोपी हुई गंभीरता नहीं है। एक है कि संकल्प कर ले कि दूसरे समझे कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, ये भी ऐसा है कि दूसरे ये समझे कि मैं बहुत होशियार हूँ इसके लिए मैं चुप और एकदम गंभीर हूँ। वो गंभीरता तो ऊपर से डाली हुई है, वो नहीं, ये गंभीरता हम बात कर रहे हैं, इट इज अ रिजल्ट, वो परिणाम है किसी चीज का जो अंदर जो क्रियाएं चल रही है। क्या कहा? हाँ, वो वैसा गंभीरता नहीं है जो फूट जाए, खत्म हो जाए। गंभीरता होता कुछ अंदर कुछ क्रियाएं चल रही है, विचार चल रहे, कोई महान श्रेष्ठ सोमान के, उसका वो परिणाम है। मौन उसका परिणाम है, गंभीरता परिणाम है जो बाहर दिख रही है। हाँ, रमणीकता बिना चिंतन के, बिना सोमान के, बिना स्वचिंतन के, अवेयरनेस के, वो सब नहीं हो सकता। अगर वो इसके ये न होते हुए वो आ रहा है तो उसमें गड़बड़ है फिर कुछ। वो जो गंभीरता है उसमें या तो कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो जो गंभीरता है ना, कोई व्यक्ति एकदम शांत हो जाता है, कोई लोग प्लानिंग नहीं करता है। हाँ, हाँ वो तो आ जाती है। वैसे तो मौन ऐसा एक गुण है ना, चाहे कोई भी मौन रहे, कोई भी, चाहे निगेटिव वैसे भी रहे, फिर भी उसमें शक्ति आ ही जाती है। टोपियों और कुछ भी नहीं चाहिए हमको, जो भी हो ना सब अंदर से सहज निकलना चाहिए, सहज। जो भी ऊपर से जबरदस्ती करोगे वो एक दिन मन उसको तोड़ के विस्फोट होगा। एक कोई भी चीज, इसके लिए कोई भी चीज को अगर सहज बनाना है तो उसको तुरंत नहीं करो, पहले उसको देखो क्या है, उसको सोचो उसके बारे में। अगर कोई हमको अवगुण भी निकालना है, किसने कहा क्रोध छोड़ दो, क्रोध छोड़ दिया, प्रतिक्रिया कर ली, वापस आ गए, क्योंकि उसको समझा नहीं है। समझ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ज्ञानमयी समझ, प्रेममयी समझ, हमारा मार्ग ही वो है। ऊपर से थोपने का मार्ग नहीं है हमारा, जो कि साधु संन्यासियों ने किया है। कोई भी चीज के, चाहे वो किसी भी वासना को, कोई भी विकार को निकालना है, कोई अवगुण को निकालना है, आदत को निकालना है, उसको समझो, उसके बारे में दिन रात चिंतन करते रहो। अच्छा, फिर आगे क्या कहा बाबा ने? फिर तो वो कोई भी चेहरे वाले, कोई फोटो निकाले तो वैसा ही निकले जैसे कि वो। फिर ये नहीं करना कि ये काम ये परिस्थिति ऐसी थी, कोई बहाने नहीं, बात ही ऐसी थी, ये सब नहीं करना। फिर उसके बाद में वो बाबा ने हाथ उठवाए, परिवर्तन करके ही दिखाएंगे। बाबा ने कहा मन का हाथ उठाना, मन का दृढ़ संकल्प का हाथ, तो ही सफलता स्वरूप बनेगी। और फिर वो पॉजिटिव निगेटिव की बात कही ना, कि निगेटिव के आने सोचने का रास्ता बंद। उदाहरण कौन सा दिया? तूफान। ये कौन सी 98 की मुरली है ना, 99 में उड़ीसा में तूफान आया था, बहुत बड़ा साइक्लोन, सुपर साइक्लोन, उस बात का है, जून का है, जून 99। ये तो पहले का है थोड़ा, वो हाँ वो स्कूटर तो वो जो तो बाबा ने कहा तूफान जब आता है तो दरवाजा खुल जाता है, तो इधर व्यर्थ का तूफान, व्यर्थ का सुनामी आता है तो व्यर्थ नहीं निगेटिव, तो वो भी वो सोचने का रास्ता जो बंद है वो खुल जाता है।
आप सोचते हो कि लगा के आया हूँ लेकिन
खुल जाता है। और एक निगेटिव अगर आ गया तो एक निगेटिव दूसरे निगेटिव को जन्म देता है, एक व्यर्थ दूसरे व्यर्थ को जन्म देता है, एक के बाद एक निगेटिव। किसी एक आत्मा का एक अवगुण अगर हम देखते हैं तो दूसरा अवगुण भी दिखना चालू हो जाता है, धीरे धीरे सारे अवगुण दिखने चालू हो जाते हैं। किसी के बारे में पहले से कुछ सोच के रखा कि इसमें ये अवगुण है, तो वो अगर आएगा और कोई भी सेवाएं करेगा ना तो उसमें हमको अवगुण ही दिखेंगे उसके, क्योंकि हमने प्री फॉर्म्ड एक पूर्वा अनुमान लगा के रखा है, पूर्वाग्रह जिसको कहते हैं बायस, वो ही सब दिखेगा उसमें। भले वो अभी नहीं है, वो 10 साल पहले था उसमें वो अवगुण, पर हमने जो समा के रखा है कि इसमें ये अवगुण है, अभी वो छूट भी गया उससे, पर हम जो भी उसको करते देखेंगे वो दिखेगा ही हमको। तो ये हाथ उठाया बाबा ने, फिर लास्ट फिर डबल विदेशियों से मुलाकात मिल रहे हैं ना, क्या कहा उनको, 400 लोग आए हैं, 10 साल से ज्यादा चलने वाले हैं। मनाना अर्थात दो अर्थ बताए मनाने के, बनना और दूसरा
बनाना,
नहीं बनाना उमंग उत्साह बढ़ाना, बनना अर्थात उमंग उत्साह बढ़ाना, और बनना अर्थात नहीं मनाना अर्थात बनना, या मनाना अर्थात उमंग उत्साह बढ़ाना। और फिर वो तीन चीजें देखी, एक तो हार, एक तो चुन्नी और एक तो ताज। अभी हार दो, डबल हार, कौन सा, गले का हार और दूसरा दूसरों को बाप के हार, गले का हार बनाना, एक ये हार। ताज सेवा, बाबा ने कहा सेवा कहे या मौज कहे, सौ पुरुष तो सेवा, मौज ही है ये, सेवा क्या कहे इसको, मौज ही। तो ये ताज, और तीसरा चुन्नी कौन सी, गोल्डन एजेड स्थिति, मतलब शक्तिशाली स्थिति, प्योर गोल्डन एजेड मतलब प्योर स्थिति, जैसे उधर थी वैसे इधर। तो ये तीन बातें हैं, गोल्डन एजेड स्थिति, हार डबल हार, और तीसरा ताज सेवा का, ये तीन बातें डबल विदेशी को बताने के। और फिर वहां पर वापस वो स्थिति का कहा, चेहरा कैसा हो, शक्तिशाली शीतल मुस्कुराता हुआ रमणीक गंभीर,
फिर रिपीट किया,
हाँ फिर रिपीट किया,
पक्का कराने
पूरा एक ही मुरली है कोई पार्टियों से, अभी तो पार्टियां चालू ही नहीं हुई शायद, इसमें बहुत लिया ही नहीं है, है क्या उसमें पार्टियों से मुलाकात होगी, और मैंने देखा नहीं,
नहीं इसमें नहीं है,
बस उतना ही है मुरली, इतनी है,
नहीं वो नहीं देखी,
ड्रिल, हाँ फिर लास्ट पैराग्राफ ड्रिल का, नहीं ड्रिल के बाद पूछ रहा हूँ, कुछ पार्टियों से मुलाकात ओरिजिनल मुरली में, ये तो शायद ज्यादा होगा करके उतना दिया है, इसमें है ये मुरली में
रिंग होती थी,
अच्छा ठीक है आप देखिए। तो फिर है ड्रिल कराई बाबा ने, कौन सी ड्रिल, क्या क्या कहा, कर्मेंद्रिय रूलिंग पावर, रूलिंग पावर है रूल करना शासन करना किसी ऊपर, और कर्मेंद्रिय जीत, जब चाहो जहां चाहो जब चाहो कर्मेंद्रियों को वश कर सको, और ये वाली वही वाली बात वहां आ गई। फिर कितना भी व्यस्त हो मन बुद्धि या कोई भी समस्या हो तो स्टॉप कहा और स्टॉप, ये पूछा। और भी कुछ कहा, और भी कोई पॉइंट रहेगी,
वरदान
नहीं मुरली में, हाँ सागर की समाने की शक्ति,
सागर में कीचड़ा समाते हैं,
समाने की शक्ति है, जैसे सागर क्या करता है कीचड़े को समाता है, अगर कीचड़ा डालो तो कीचड़ा वापस नहीं देता है, वैसे तुमको ना ज्ञान के सागर के शक्तियों के सागर के बच्चे हो, मास्टर हो, मास्टर हो तुम, ये भी एक उदाहरण दिया,
ये वहीं पर था ना कुछ भी
है ना, नहीं रहम रहम दाता उसके बाद ये, हाँ चाहे कोई कुछ भी करे तुम उसको बुरा स्वीकार ना करो, स्नेह दो शक्ति दे सहयोग दो, उसी का विस्तार है, अपनी स्थिति की गिफ्ट से गुणों का गिफ्ट दो, और फिर समाने की शक्ति है समा सकते हो, ऐसे पूछा ना, फिर आगे ये विस्तार से,
हाँ डायमंड हॉल के दरवाजे की बात,
हाँ
डायमंड हॉल के चार स्टेज पर खड़े होकर अपने दोस्तों से झंडा ले रहा है,
कितने बजे टाइम लिखा रहता है यूजुअली, 3 बजे 2 बजे इतना नहीं होगा, 11 होगा, ये 98 की है, 70s में 2-3 बजे, ये थोड़ा टाइम
ग्यारह
साढ़े ग्यारह। तो सारी मुरली में से पुरुषार्थ की क्या क्या पॉइंट है, सबसे मुख्य तो ये जो ड्रिल बताई कि चाहे कितना भी व्यस्त हो स्टॉप कहा और स्टॉप, फिर दूसरा है चेहरा, चेहरा कैसा हो, हर्षित मुख, फरिश्ता, वरदानी, अथक, रहम दिल, दाता, ये एक एक शब्दों में कितने गहन अर्थ है, केवल की याद करने की बात नहीं है, इसको डीप है, बहुत डेप्थ है इसमें। सहज पुरुषार्थ, फिर क्या कहा, सदा पॉजिटिव, नेगेटिव का दरवाजा बंद, और क्या कहा, बाप समान बनना ही है, परिवर्तन करके ही दिखाएंगे, और मन का हाथ, दृढ़ संकल्प का हाथ उठाना तो सफलता प्राप्त होगी, नहीं तो नहीं। तीन खाते कैसे जमा करना, संतुष्ट रहना और करना, समय समाप्त, वरदान समाप्त, दूसरा खजाना ये उनका पुण्य का, दुआओं का और पुरुषार्थ, फिर संतुष्ट रहना करना, वही सब आ गया उसमें। और क्या कहा आपने, समय समाप्त, युग समाप्त, गंभीरता, पुरुषार्थ गंभीरता का, वो गंभीरता स्वतः ही आ जाती है, अगर ज्ञान चिंतन में कोई रहने लगा ना तो स्वतः ही गंभीरता आ जाती है, और वो भी कोई ऐसी मतलब डेड वाली या एकदम खतरनाक गंभीरता नहीं होती जिसको दूसरों को डर लगे, उसमें रमणीकता सहज हो, सहज रमणीकता भी रहेगी, पर अंदर से ज्ञान चिंतन रहेगा, वो एक ही मार्ग है मौन रहने का। ये हर्षित मुख अवस्था जो भी है ना, वो भी एक्चुअली ज्ञान की अवस्था है, ज्ञानमय अवस्था, ज्ञानमय जो है वही हर्षित मुख है। हर्षित मुख मतलब बहुत हंसना, बहुत जोक करना, बहुत बात करना, बहुत ही मतलब ये हंसी मजाक करना, ये कोई हर्षित मुख नहीं है,
तो लोग किसी को तंग करके भी घुस रहते हैं, कोई अवस्था थोड़ी
नहीं, ये संसार में ऐसे कुछ लोग होते ना बहुत खुश रहने वाले लोग होते, पर वो भी अवस्था हमारी नहीं है। जैसे बाबा कहते हैं कर्मयोग, लोग क्या करते हैं कर्मयोग अर्थात केवल जो काम कर रहे हो सुबह से लेकर शाम तक बस एक ही काम कर रहे, हमारा वो कर्मयोग नहीं, हमारा कर्म करते हुए बुद्धि ऊपर, ये हमारा कर्मयोग अलग है। नहीं तो कोई बोलता है मैं तो कंप्यूटर पे लगा हूँ सुबह से लेकर शाम तक, कोई व्यर्थ का सवाल नहीं, बस सेवा है, ये थोड़ी ये नहीं वो करके ड्यूटी हो गई हो तो वो नहीं, हमारा वो तो हम निमित्त मात्र कर रहे हैं जो जिसको सेवाएं मिली है, मेन हमारा कुछ और ही है, उधर कितना कनेक्शन है, हमारा कर्मयोग और संसार, विवेकानंद का किताब है कर्मयोग, वो जो कर्मयोग है उसमें भगवान का कुछ नहीं है कनेक्शन, वो बस अपना जो कर्म है वो निस्वार्थ भाव से करो, पूरा निष्काम भाव से करो और पूर्ण लगन से करो ताकि वो एक्यूरेट हो और परफेक्ट हो, ये संसार का कर्मयोग है। पर हमारा कर्मयोग ये है ही नहीं, ये बहुत ही डिफरेंस है हमारे कर्म, कर्म योग हमारा बाप से कनेक्शन, उसकी याद अगर नहीं है वो कर्म करते हुए तो बहुत कम फल मिले, फल जिसका जो रिजल्ट है कम है, वो 5% बाबा ने कहा था, हाँ वो तो मतलब अच्छा कर्म है, वो बहुत महान कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है संसार की रीति से, जैसे मतलब ये हॉस्पिटल की सेवा है जो होती है एक रीति से देखा जाए तो वो ठीक है, वो समाज सेवा है ना एक रीति से, बस वो समाज सेवा हमारा लक्ष्य नहीं है, पर केवल हमारा तो बहुत ऊंचे लक्ष्य है, धर्मशाला खोल दो, अनाथ आश्रम खोल दो, हॉस्पिटल खोल दो, ये सब जो है ये समाज सेवा के अंतर्गत है सारी चीज, वो हमारी जो सेवा है तो वो तो बहुत ऊंची सेवा है, हाँ विश्व मतलब महान सेवा है हमारी। ये एक भी एक पॉइंट था ना, जो अभी विश्व स्वराज्य अधिकारी है वही विश्व राज्य अधिकारी होंगे, वो कंट्रोलिंग पावर की वहीं पर एक पॉइंट थी, तो हमारा जो सेवा है वो ऊंची सेवा है बहुत, ये तो लोग को तो समझ में नहीं आता, लोग बोलते क्या कर रहे बैठे हैं, ये कोई सेवा है क्या, कोई किसी की सेवा करो तो मानेंगे सेवा, ये तो बैठे चलो उधर, हम उधर गए थे ना उत्तराखंड में, तो हमारे जाने से पहले वहां का सुशील भाई क्या कह रहे थे, अरे अच्छा हो गया आप लोग आ गए, आप लोग अभी तक तो बस लोग कहते थे तुम लोग कर क्या रहे हो, और हम जब कहते थे हम योग कर रहे हैं तो क्या ये कोई सेवा, लोग तो योग को सेवा थोड़ी मानते, लोग उधर मर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, प्रकाश दे रहे वाइब्रेशन बैठ के उधर भूखा ये सब लोग ये हो रहा है वो हो रहा है, अरे ब्रह्मा कुमारी क्या कर रही है, वैसे ही प्रश्न उनको बोला था, उसको इतने खुशी हो गया जब हम पहुंचे ना फटाफट, जो भी तरह इसको जिसको बताना था उनको उसने फटाफट बताया, उधर है ना देहरादून में सुशील भाई, तो लोक सेवा ये योग को थोड़ी सेवा मानते हैं, ज्ञान सुनाने को सेवा थोड़ी मानते हैं, उनको स्थूल चाहिए, कोई मर रहा है उसको बचाना, कोई बीमार है उसकी सेवा करना दिखने वाली सेवा, कोई आपदा आ गई है उनको कुछ खाना वगैरह देना, अनाथ लोग हैं उनकी सेवा करना, विधवाओं का मैरिज रीमैरिज ऑफ विडोज, ये इस तरह के जो भी है
विवेकानंद जैसा करके गए
हाँ, मतलब ये जो चीजें हैं ये इनको सेवा मानते हैं लोग, ये हम इधर कुछ हो गए यहाँ योग कर रहे हैं, एक्चुअली है यही सेवा तो वो अदृश्य है, लोग इसको मानते ही नहीं है स्कूल में अगर देखा जाए। क्या कर रहे हैं बेचारे ने, बाबा ने ये भी कहा भक्त जानते नहीं फिर भी श्रेष्ठ समझते हुए मानते हैं और मनाते हैं, ये भी एक पॉइंट है शिव अवतरण, वो मान उनको पता नहीं तुम जानते हो पर भक्त तो नहीं जानते पर फिर भी श्रेष्ठ समझते हुए मनाते हैं, तो ये भी एक पॉइंट है। तो और क्या है आज के एक में, तो अवतरण के लिए भी हमारा उसके साथ अवतरण है, हीरे तुल्य जीवन है, ये भी सब समान की पॉइंट है। और भी कोई
है
यज्ञ रच के मतलब, अच्छा ये हो गया वरदान सेकेंड की जो चाहो जैसा चाहो जितना चाहो जो चाहो, मतलब वस्तु जैसा किस रीति से विधि जितना क्वांटिटी भाग्य बना सकते हो, तकदीर बनाने की चाबी बच्चों को दी है आपके पास है। उसमें और एक चीज है कि सेवाओं के विस्तार समय ज्ञान स्वरूप स्थिति सार स्वरूप में स्थित हो जाना, बीज स्वरूप में स्थित हो जाना, यह अनुभव करना, ये था वरदान। स्लोगन
डबल लाइफ
डबल सेवा मनसा वाचा
प्रकृति दासी
बन जाए,
डबल लाइफ
प्रकृति दासी डबल सेवा
सेवा
तो प्रकृति दासी बन जाए। चलो और 5-10 मिनट है, और कुछ एक हफ्ते का याद आ रहा है एक हफ्ते में क्या निशानी है क्या निशानी
करते बाबा ने कहा याद करो बैठने की जरूरत नहीं है,
तुम ऐसा नहीं कहोगे कि हमको योग सिखाओ निष्ठा में बिठाओ, ये तुम्हारी निशानी है कि हमको योग सिखाओ, योग क्या सिखाना होता है क्या
बार बार
याद करने के लिए सिखाया, माँ को वैसे थोड़ी नहीं, माँ को तो बच्चा वैसे ही याद करता है, बाप को तो ऐसे
याद करता है,
इनको सिखा होगी
फीलिंग तो उसको सर्वव्यापी की ज्यादा आती
है सर्वव्यापी और दो सबसे ज्यादा उसको इधर जो चोट लगती है वो एक ही दो बात की है गीता का उसको भी उड़ाला मेरा भी नहीं डाला ये दो बातें और दादी ने कहा भी था कभी बाबा को, बाबा कभी ये बात कर रहे थे बाबा आपको फील हो गया क्या की बात कर रहे थे, जानकी दादी ने कहा था बहुत पहले दादी ने क्लास में सुनाया था बाबा कृष्ण की बात कर रहे थे ऐसे कि भाई वो नहीं है मैं हूँ उसका नाम डाल दिया बाबा आपको फील हो गया क्या
लगता है
ही बाबा को बाकी कुछ नहीं, पर ये जो दो बातें हैं ना ये इधर उसको
वर्जन तो ये भी बोला ना कि दूध चढ़ाते हैं कैसा दूध चढ़ाते हैं दूध अच्छा चढ़ाना चाहिए, ये कितना 95% पानी चढ़ा
रहे कम से कम पूरा तो चढ़ा फुल प्योर ये दो बातें उसको है सर
ब्राह्मण दूध पानी मिलाने नहीं देते हैं
अच्छा उधर सच्चे भक्त होंगे
कोई
और एक बहुत अच्छी पॉइंट थी ये हफ्ते में मुरली में गृहस्थ व्यवहार में रहते फॉर माय सेक पवित्र बनो, बाप बच्चों से भीख मांगते हैं बाप बच्चों से भीख मांगते हैं
कैसे बच्चों का दिल पिघल है
हाँ बस ये इमोशनल थोड़ा सा ब्लैकमेलिंग टाइप क्या कह रहा बाबा ने गृहस्थ व्यवहार में रहते फॉर माय सेक केवल मैं कह रहा हूँ अभी भूल जाओ वो पवित्रता से क्या होता है क्या नहीं होता है वर्षा मिलेगा नहीं मिलेगा ये सृष्टि चक्र का ज्ञान कुछ है वो सब भूलो अभी केवल मैं कह रहा हूँ बस अब यहाँ एकदम वो पर्सनल टच आ गया बस मैं फॉर माय सेक मेरी खातिर मेरे लिए केवल मेरे लिए बस हम कहते हैं ना किसी को कि भाई ठीक है तुम्हारा उससे नहीं बनता, पर मैं कह रहा हूँ ना अभी बस उसके लिए उतना इसके लिए कर दो, तुम करना नहीं चाहते ठीक है बहुत सारे कारण है राइट ओके एक्सेप्टेड, बट मैं अभी कह रहा हूँ ना बस एक बार मेरे लिए ये जो कर रहे हो बस मेरे लिए ठीक है तुमने बहुत खा लिया अभी तो मेरे लिए एक रोटी और खा लो, मैं कह रहा हूँ कर मेरी तरफ से ऐसा करते है ना ये वाली बात।
उनको कहा ना बाबा ने तो बोलते कि बाबा के आंख में नीचे नहीं गिरे आंसू मेरे लिए रहो, क्योंकि बाबा का एक सामान तैयार करना था ना रस्ते वाले,
बीच में याद भी किया था मैं शुशा
बोला डर है इनको
बाबा ऐसा इमोशनल कुछ कुछ करता है
नारायण का चित्र।
और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अगर विकार में गए तो ज्ञान सुना नहीं सकते,
बंद हो
जाएगा सुना, बहुत पावरफुल वाक्य है। स्वयं बाबा विकार में जाते और सेंटर पर भी आते स्वयं का सत्यानाश करेंगे, कल था स्वयं का ही सत्यानाश करते, सोचना चाहिए मेरी दुर्गति हो रही है, ये बड़ी सूक्ष्म बात बाबा ने कही विकार। हाँ वो वहीं पे पूरा एक दो लाइन थी, स्वयं का सत्यानाश स्वयं की दुर्गति और ज्ञान सुना नहीं सकेंगे, ज्ञान सुनाना बंद हो जाएगा, वो पावर नहीं रहेगी जो तेज रोज रहे ना वो खत्म हो जाएगा।
बोला ना 3 साल लगते
और असर भी नहीं होगा उसका। हाँ कभी 3 साल
नहीं बोला ना जो उसने में 3 साल लगते हैं वो पावर नहीं आएगी,
फिर भी वो पावर नहीं,
वो पावर नहीं
आएगी। 6 मार्च तक
चलेगा क्या कहा मानस, हड्डी टूट जाती है सत्यानाश हो जाता है चार मंदिर के नीचे, हाँ ओरिजिनल नहीं होता है वो माल यूनियन होता है उसको हम लोग माल यूनियन कहते हैं, जैसे ऐसी हड्डी है यहाँ से टूटी, अगर ज्यादा टूटी नहीं थोड़ी तो टूटी पर मतलब कुछ किया नहीं, पर वो जुड़ेगी तो ऐसी जुड़ती है, फिर ऐसी कैसी नहीं जुड़ती है, कभी कैलस फॉर्मेशन होता है वहाँ पे, कैल्शियम डिपोजिशन होता है कैलस फॉर्मेशन से, ऐसे थोड़ा माल यूनियन किसी आपने देखा होगा कई लोग ऐसे ही रहते हैं किसी का हाथ ऐसा ही होता है क्योंकि वहाँ कभी फ्रैक्चर हुआ था 20 साल पहले का फ्रैक्चर कही है ऐसे अभी तक
चाल में भी ले आ जाती
है। हाँ वो मतलब थोड़ा रहता ही है कैलस फॉर्मेशन,
वही बाबा ने कहा विकार में या तो पहले वाली बात,
तो हड्डी टूट मतलब और वो भी मल्टीपल फ्रैक्चर, एक होता है सिंपल फ्रैक्चर मतलब ये हड्डी टूट जाना दो टुकड़े हो जाना, ये तो उन्होंने सिंपल, एक होता है कंपाउंड फ्रैक्चर जिसमें ऐसे टुकड़े टुकड़े हो जाना उसमें एक होता है कम्युनिटेड फ्रैक्चर, कम्युनिटेड और कंपाउंड, कंपाउंड मतलब हड्डी बाहर आ जाना इधर से और उसमें इन्फेक्शन हो जाना, हड्डी बाहर आके उसमें और हो जाना कंपाउंड कम्युनिटेड, ये जो है ना ये कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर है और यहाँ बाबा कर रहे हैं मल्टीपल फ्रैक्चर के स्पिरिचुअल फ्रैक्चर मानसिक फ्रैक्चर, मन जो है ना मन में फ्रैक्चर तो वो वहां से फिर नए संकल्प हो सकता है, फिर वो एकदम असाधारण पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उसको पूरा उसके ही पीछे लगना पड़ेगा सब कुछ छोड़कर, केवल ये एक ही पुरुषार्थ एक ही लक्ष्य एक ही लगन बस दिन रात ज्ञान चिंतन ज्ञान का मनन चिंतन, तो आत्मा उससे भी निकल सकती है बाहर। हाँ बाल ब्रह्मचारी चाहिए, बाल ब्रह्मचारियों की तो महिमा बहुत है,
जिस कर्म इंद्रिय से पाप हुआ कर्म हुआ कोई भी हो उस कर्म इंद्रिय से जो सेवा होने वाली है उस कर्म उसी सेवा में लग जाना चाहिए तो पाप हो सकता है।
और दूसरा और एक सूक्ष्म इसमें अभ्यास कर सकते हैं, अगर हमको क्रोध से छूटना है अगर काम से छूटना है तो उन आत्माओं को इमर्ज करो कि जिनमें बहुत सारे विकार है और उनको ऐसी शक्ति दो कि वो इससे छूट रहे, छूट हम रहे कोशिश करने की पर सेवा क्या कर रहे हैं, जैसे उन आत्माओं को इमर्ज करो, जैसे सारी संसार की वेश्या या सारी विकारी आत्माएं हमारे सामने हैं और इन सभी विकारी आत्माओं को मैं परम पवित्र आत्मा मुझसे प्योरिटी की किरणें जाकर उन सभी आत्माओं को जा रही है और इन सभी विकारी आत्माओं में जो देह का आकर्षण है वो जैसे कि शून्य हो रहा है खत्म हो रहा है, जैसे इन आत्माओं में वो जो जितने भी हॉलीवुड और बॉलीवुड और वो सारे जो है जो कि उनका देह ही उनका संसार है उसी में लिप्त रहते हैं वो, तो वो सब आत्माओं में देह का आकर्षण ही समाप्त हो रहा है, ऐसी पवित्रता की किरणें उनको दो। ये हम कब दे रहे जब हम खुद से छूटने की कोशिश कर रहे तो हमारा पुरुषार्थ और सहज हो जाएगा, जिससे छूटना है वही दान करो, उसी से दूसरों को छुड़ाओ, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक वो, जैसे हम उन क्रोध सब आत्मा को इमर्ज करें जिनमें बहुत क्रोध है और उनको हम शांति की किरने रोज दे, तो हमारे अंदर का क्रोध स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ये भी हम एक सूक्ष्म अभ्यास कर सकते हैं इस तरह का।
अपने क्रोध जा कहाँ रहा है?
वो बोलते थे
ये मुरली का पॉइंट हो गया क्या आज इसमें, मन रहम की बात है वहाँ पर एक पॉइंट है कि एक्स्ट्रा रहम समझ करो ताकि वो परिवर्तित हो जाए।
हाँ, वो ऐसा करोगे तो वो आत्मा ही परिवर्तित हो जाएगी, मतलब उसको रहम स्नेह शक्ति, एक्स्ट्रा स्नेह स्नेह शक्ति सहयोग दो, एक्स्ट्रा स्नेह दो तो वो आत्मा स्वयं परिवर्तित हो जाएगा, अपने आप परिवर्तित हो। उस दिन बोला ना कि तुम ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बना सकते हो, विज्ञान ने क्या कर दिया है, वो पहाड़ों पर फूल खिलाए हैं, रेगिस्तान को हरियाली लाया है, हरियाली लाई है रेगिस्तान में, तो तुम अपने श्रेष्ठ संकल्पों से ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बना सकते हो। उसके दूसरे दिन की परसों की मुरली में भी एक था कि तुम अपने श्रेष्ठ संकल्प से किसी भी आत्मा का संबंध बाप से जोड़ सकते हो और उसको मालामाल बना सकते हो, तुम्हारे पास सत्ता प्राप्त है, प्रकृति जी और माया जी जैसे वो सकामी राजाओं के पास सत्ता प्राप्त है, जो उस सत्ता के आधार से किसी को भी जो चाहे वो बना सकते हो, तुम्हारे पास प्रकृति जी और माया जी की परमात्मा सत्ता प्राप्त है, इसके आधार से तुम ये करा सकते हो, किसी को भी मालामाल कर सकते हो। तो हमारे संकल्पों में बहुत पावर है, बहुत पावर है, एक एक संकल्प बहुत शक्तिशाली है, उसकी और प्यूरिटी जितनी ज्यादा बढ़ाते जाएंगे उस संकल्प में पावर बढ़ती जाएगी, और एक ही संकल्प हाँ अपने आप टचिंग होती जाएगी, मतलब ये होती जाएगी इतने शक्तिशाली है संकल्प। संकल्प से ही बाबा ने मास्टर सर्वशक्तिमान की एक परिभाषा दी है, मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात जो अपने संकल्प से ही सब कुछ कर सके, और ये होता है अगर हमने इसको एकदम निस्वार्थ इससे किया, उसमें कोई अपना हाँ हस्तक्षेप नहीं किया कुछ भी ज्यादा, तो वो जो संकल्प है बराबर उस आत्मा को टच होगा और वो आएगी। जो हमारे कार्य नहीं हो रहे, कुछ चाहिए, कोई ऑफिस से कार्य नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, हम अगर संकल्प करें कि ये कार्य अब तक हो जाए तो होगा, और इसमें कोई बड़ाई की भी बात नहीं है कि भाई मैंने ऐसे किया तो हो गया, ऐसा नहीं, वो तो संकल्प है, ये सबकॉन्शियस माइंड के नियम यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, ऑटोमेटिक होगा वो सारा कुछ।
वैसे ये संकल्प भी बहुत काम करता है।
हाँ, इसके लिए अमृत वेले हम जो पावरफुल संकल्प करें, अगर हम किसी आत्मा को मधुबन में लेके आना है तो हम उसको रोज इमर्ज करें और उसको आह्वान करें कि यहाँ आ जाओ, तो वहां आ जाएगी। किसी का मन परिवर्तन करना है, किसी की बुद्धि परिवर्तन करना है, आत्माओं से रूहयान करना अमृत वेले, ये बहुत ही अच्छा काम है। कुछ आत्माओं को विशेष, बाकी तो विश्व सेवा तो कर ही रहे, पर कुछ विशेष आत्माओं के जिनके साथ हमको लगता है हमारा हिसाब किताब है, उनको अमृत वेला इमर्ज करके उनसे बातें करना, टॉक विद दोस्तों, चाहे माफी मांगना, चाहे माफ करना, चाहे धन्यवाद देना, जो भी कार्य करना है उनसे करो। माफी दे दो, ये करोगे ना तो एक ऐसा समय आएगा, कुछ समय करते 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 हमको लगेगा माफी हो गई एकदम ही अंदर से, अभी हमने बात भी नहीं किया उससे, कुछ किया भी नहीं, बोला भी नहीं मुख से, पर हम उससे रोज माफी मांग रहे हैं, 6 मास तक उससे माफी मांग रहे, तो ऑटोमेटिक हमको अनुभव होगा एकदम ही हल्का हो जाएगा, जैसे कि माफी हो गई,
ऐसा अनुभव भी हट जाएंगे। हाँ, कल भी नहीं जाएंगे
ऑटोमेटिक, धीरे धीरे फिर वो हम माफी मांगना ही खुद ही बंद कर देंगे उससे, जो रोज माफी मांग रहे हैं ना, तो एक ऐसी अवस्था है कि हम माफी मांगना बंद हो जाएगा, जैसे हो गया वो
जैनी लोग साल में एक
बार, वो पहले तारीख को उनका मैसेज आता है, जो भी किया होगा माफ कर दो। पर हमारा तो उससे भी सूक्ष्म है, श्रेष्ठ है, वो खाली वर्ड्स है, शब्द है बस। और भी कुछ कहा, एक हफ्ते में कोई पावरफुल पॉइंट,
4-5 दिन से पहले बोला कोई, कहते मेरे से तो होता नहीं,
तो
मैं तो कर नहीं पाता हूँ,
आलस्य आलस्य थकान, आलस पुरुषार्थ में थकान, आलस हिम्मत नहीं है, कर नहीं सकता, हो नहीं सकता, तो वहाँ पे साक्षी, साक्षी का दूसरा था कुछ भी होता रहे साक्षी होके देखते,
अच्छा साक्षी और वैराग्य,
कुछ भी होते रहे उधर हाहाकार इधर जय जयकार, कोई मर रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, होने दो, तुमको तो एक ही फूटना रहना चाहिए, कोई मरे जिए, तुमको तो बस बाप से बरसा रहना है, ये फूरना रहना चाहिए, बस ये है कि फूरना रहना चाहिए,
पढ़ाई में बहाने नहीं चलते,
कोई बहाने नहीं,
मोरली क्लास में।
वो एक हफ्ते पहले और आते वो तो है ही। बोलो कमलेश भाई कुछ तो बोलो। कमलेश ध्रुव है ये
हॉस्पिटल
और महाराज जी सेवा में है दो दादाओं की
विद्या
प्रकाश जी और खुशी बहुत तो शांति स्वरूप आत्मा स्वधर्म में ही शांति है तो किससे शांति मांगोगे। और शांति यहाँ मिलेगी ही नहीं। बड़ा निराशाजनक उत्तर दे दिया बाबा ने। कोई कहे कि भाई शांति कैसे मिलेगी उसको बोलो यहाँ है ही नहीं उधर है परम धाम में।
परम धाम थोड़ी है
ये परम धाम नहीं है। शांति तो तुमको वहां मिलेगी। मतलब कैसा उत्तर है अगर कोई
लगातार।
जब दूसरे इसमें प्रश्न के उत्तर में आ गया कि ये कोई यहाँ परम धाम है क्या
यहाँ शांति नहीं हो सकती बड़ा निराशाजनक उत्तर है। और भी कोई एक खाली पॉइंट जैसे शरीर शरीर की याद रहती है ना तो शरीर से संबंधित सारी यादें रहती है ऑटोमेटिक करनी नहीं पड़ती है। जब शरीर भान में रहते हैं तो देह भान में रहते हैं ऑटोमेटिक सब देह का ही याद आते रहता है। उसी तरह जब आत्मिक स्वरूप में है तो आत्मा से संबंधित जो भी चीजें हैं फिर उसकी स्वतः याद आएगी। फिर याद नहीं करना पड़ेगा परमात्मा को वो स्वतः ही आत्मा फिर परमात्मा परम धाम सब याद आ जाएगा। पूरा सृष्टि चक्र और पूरा चक्र कैसे लगाया स्वतः वो यादें आएगी। देह भान में है तो स्वतः ही देह की सारी बातें आत्माभिमान में है तो आत्मा से संबंधित सारी बातें।
ज्ञान ग्रस्त
दुनिया वालों को कौन सी बात
कौन सी
साक्षात्कार
साक्षात्कार की बात
बिंदु को साक्षात्कार हो चुका
जिसकी जैसी भावना जाके रही भावना जैसी प्रभु मूर्तिया की न देखी तैसी जिसकी जिसमें भावना है उसको बाबा साक्षात्कार कौन कराता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा बाबा ने। सिंह बाबा ने कहा साक्षात्कार तो ऑटोमेटिक होता है पर बड़ाई के लिए
ड्रामा
में नून है तो साक्षात्कार तो बड़ाई के लिए बाप का नाम कर देते फिर बाद में ग्लानी भी करते हैं टिकर बितर में कहके। पर ये जो प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है कि साक्षात्कार कौन कराता है। अभी बाबा ने इसमें दो अलग अलग प्रकार के उत्तर देके रखे। कुछ मूर्तियों में कह रहा है कि द्वापर युग से मैं ही साक्षात्कार कराता हूँ। कभी बाबा ने कहा ये मैं थोड़ी साक्षात्कार कराता हूँ ड्रामा अनुसार साक्षात्कार होते हैं
संगम पर कराता हूँ।
संगम की बात नहीं दिव्य दृष्टि चाबी वही दर है। पर ये जो बाबा जो बोलते हैं द्वापर से मैंने साक्षात्कार नहीं करा है। एक तरफ बोलते मैंने नहीं करा है दूसरे तरफ से मैंने करा है
वो ड्रामा में आते ही।
और उस दिन बोला कि वो ऑटोमेटिक होते हैं मतलब जिसकी जो भावना होती है सबकॉन्शियस माइंड में जो फीलिंग है उसी वो हनुमान है तो हनुमान दिखेगा। मैं नहीं कराता सब बोलो कौन कराता है।
सारी गड़बड़ तो यही किया
है ज्ञान अर्थात ये ज्ञान ही ऐसा है कि इसमें विरोधाभास है बहुत सारी चीजें में ये इधर इधर ये इधर इधर अलग वो निश्चय की परीक्षा लेता है बाबा। सूरज भाई ने कभी बाबा से पर्सनल मुलाकात में कुछ तीन प्रश्न पूछे थे उसमें से तीसरा प्रश्न ये था कि बाबा द्वापर युग से जो साक्षात्कार कराते हैं वो आप कराते हो तो बाबा ने कहा था मैं नहीं कराता साक्षात्कार द्वापर से ऑटोमेटिक होते रहते हैं जिसकी जिसमें भावना वो और पक्की हो जाती है और वो पक्की होनी जरूरी है नहीं तो वो बढ़ेगी कैसी भक्ति का विस्तार ही नहीं होगा। भक्ति का अगर विस्तार ही नहीं हो अज्ञान अगर फैलना है ये प्लानिंग है अज्ञान को फैलाने की मास्टर प्लान है कि अज्ञान फैले और फिर लास्ट में कुछ तो आना कुछ तो मैं आता हूँ तुमको ज्ञान देने। हाँ वो भी बाबा कहते मुझे कराना पड़ता है तो फिर कभी करते मैं नहीं कराता मैं तुमने पुकारने थोड़ी आया हूँ मैं अपने टाइम पर आता हूँ ये मेरी ड्यूटी है पति को पावन बनाना मैं अपने टाइम पर आता
हूँ।
तुमने पुकारा तुम्हारी पुकार बाबा को उधर हिलने लगा बाबा बाबा को बेचैनी होती है फिर बाबा आते हैं। हाँ वो सब बोलते हैं
बाप को मदद कैसे कर सकते हैं ये चिंतन के
कारण। बाप की हम किस किस अभी टाइम हो गया है पर बहुत अच्छा ये बोलता है कि बाबा के हम मददगार एक मुरली में आया था ना बाप के तुम मददगार बनते हो कैसे किस किस क्षेत्र में हम बाबा के मददगार बनते हैं, मतलब वो क्या कार्य कर रहे हैं जो उसमें हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। अभी पेट भर गया। भक्ति में पाने की इच्छा रहती है तो तीव्रता रहती है, और भक्ति में सेवाएं नहीं है ना, वहाँ एक ही चीज है भगवान को पा लेना, तो एकाग्रता बहुत ज्यादा है, लगन बहुत ज्यादा है, निश्चय बहुत ज्यादा है कि बस कैसे भी करके उसको पालू। अभी यहाँ क्या हो गया, पा लिया तो पेट भर गया, और उसके बाद में अभी उसका सेवा होगा, सेवा है तो वो थोड़ा डाइल्यूशन हो जाता है साधना में। वहां क्या सेवा है ही नहीं, किसी को ज्ञान सुनाना वो सब नहीं है, खाली अपना भगवान को पाना है बस, तो ज्यादा एकाग्रता है। एक
रीति से हमारे भाषा में बोलते हैं, ये जो भाग है डाके मते अंतर है, सब कुछ यही भाव है, देखा गया मंत्र
है, बल्कि वहाँ तो पाना है
नहीं,
मंत्र बताया
जो देखा भावना से चाहता
है। हाँ वो
वही भावना से,
वो गीता में भी है ये सब, ये यथामाम प्रज्ञन्ति, तो ये जो है ना ये सब
भक्ति का है,
तो भक्ति में थोड़ी तीव्रता ज्यादा रहती है। यहाँ अगर ब्राह्मणों को शायद ये कह दिया जाए कि थोड़ी देर सेवा है बाजू रखो, केवल योग तपस्या में लग जाओ, तो सबकी स्थिति ऊपर चली जाएगी, पर बाबा ये भी नहीं चाहता, उसको वो अपनी विस्तार भी करना है सेवाओं का, चारों सब्जेक्ट, वो ये एक मुरली चलती है बस योग पर, तो सोचता है कोई आज से बस योगी, दूसरी मुरली चलती है पूरी सेवा पर, पूरा वो योग बाजू में, तुमको तो बस पर्चे बांटने हैं, ये करना है, ट्रेन में भी सेवा करनी है, ये सेवा करनी है, वो सेवा करनी है, वो फिर कहते हैं कि ये सब योग, आठ घंटा तुम्हारा योग का चार्ट होना चाहिए, फिर योग पे, फिर उसके बाद में ज्ञान, ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में खेलते रहना चाहिए,
मुख्य ज्ञान,
मुख्य ज्ञान है, सारा मदार है ज्ञान पर, सारा मदार है पूर्चा, सारा मदार है योग पर, सारा मदार है सेवा पर, सारा मदार है पवित्रता पर, तो ऐसे अलग अलग लहरें चलती
है,
करते रहता है वो
जिस टाइम जिसको बोलना है,
देश काल परिस्थिति अनुसार मूल्यां चलती है, जो चली 40 साल पहले देश काल परिस्थिति अनुसार, इसके लिए उसको वो कब चली गई, कहाँ चली गई, किसके सामने कैसे, उस वातावरण में घुस के वो मूल्यों को समझना पड़ेगा, उस कालखंड में जाकर उनको समझना पड़ेगा।
जैसे उसके पास एक बहुत बड़ा तराजू हो और वो देख रहा हो, अरे भाई सेवा और योग में अभी थोड़ा बढ़ रहा है, चलो चलो इधर करो,
अभी इधर फिर इधर फिर इधर,
फाइनली वो बैलेंस आ गया। बोला दादी जानकी का क्लास समझना हो तो उनके और पास कौन थे,
मैं नहीं कहता वो, क्योंकि वो दो तीन दिन का जो रहता है ना वो ही घूमता है, वो ही क्लासेस में रहता है, बाबा की मुरली और दादी जानकी जी का क्लास साकार मुरली, मतलब साकार मुरली कैसे, तुमको विश्व का मालिक बनना है, तुमको सेवाएं भी करनी, तुमको दिव्य गुण भी धारण करना, अभी वो पॉइंट पूरा नहीं होगा दूसरा पॉइंट, अभी वो पूरा नहीं होगा उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, उसके ऊपर ऐसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे करते करते मुरली खत्म, 100 पॉइंट हो गए, क्या था, एक खाना याद आता है, याद करना बाप को बस, वो एक ना याद और पता नहीं हो, कभी रामतीर्थ को याद कर रहे, कभी विवेकानंद को याद कर रहे, कभी वो किसको, बड़ौदा की रानी को याद कर रहे, कभी वो जापान के, नेपाल के किसको याद कर रहे, कितनी सारे लोगों को याद करता है, अरे मतलब इतना कुछ माल है उसमें। और एक आज मैंने बहुत अच्छा एक विचार आया कि ये जो मुरली है ये काव्य है, कविता है, मुरली जो है ना कविता है, अभी कविता को जो है ना, कविता के कम शब्दों में बहुत बड़ा अर्थ होता है, ये कोई प्रोज नहीं है, कोई गद्य ये नहीं है, कोई निबंध नहीं है ये कि भाई एक बार पढ़ लिया हो गया, ये कविता है, और कविता को कैसे पढ़ा जाता है, बड़ा ही सोच समझ के, एक छोटी सी लाइन में कितना अर्थ होता है,
जब तक बुद्धि में नहीं बैठे
वो आगे का, उसको एक्सप्लेनेशन चाहिए, उसके ऊपर हर मुरली के ऊपर एक क्लास चाहिए किसी अच्छे योगी तपस्वी का, उसको समझने के लिए, तो कहीं वो पोएम समझ में आती है, इंटरप्रिटेशन उसका, ये साकार मुरली भी ऐसी है, अगर देखा जाए तो एक रीति से साकार मुरलियों का जो एक्सप्लेनेशन है वो है सारी अव्यक्त वाणी, उसके वो ये जैसे उसके ऊपर टिप्पणियां है, ये उसका ये क्या कहते हैं, एक शब्द है क्या कहते हैं उसको, ये समझने के लिए इंटरप्रिटेशन है ये पूरा उसका, क्या है वो समझने के लिए ये सब कॉमेंट्री जैसे एक रीति से, वो मेन है ये कॉमेंट्री है, व्याख्यान उसके ऊपर, ये व्याख्यान है उसके ऊपर, ये टीका है सारी, तो इसके लिए साकार को समझना मतलब एक एक लाइन के ऊपर थोड़ा फोकस करना पड़ता है, इसके पहले की समझना चाहिए, ये पॉइंट यहाँ पूरा हुआ, अभी इसको रोको इधर, ब्रैकेट करो इसको, अभी ये दूसरा चालू हो रहा है, ये दूसरा, फिर यहाँ ब्रैकेट करो, ये तीसरा, क्योंकि पॉइंट्स वैसे मिले हुए
अलग
नहीं
है कुछ भी, हाँ साहित्य है पूरा,
हाँ देखता होगा, ये खाली योगी करते रहता है, ज्ञान को कुछ है ही नहीं, तो बाबा सीधा मुरली, सारा मदार है ज्ञान के ऊपर, पूरा ज्ञान के ऊपर ही मुरली, वो बेचारा एकदम हाँ वो ज्ञान में लगेगा, कोई देखता होगा खाली ज्ञान ही करते रहता है और योग है ही नहीं, तो सारा मदार है योग, तुम्हारा बैठ के योग होना चाहिए, तुम्हारा आठ घंटा योग होना चाहिए, ये सारी मुरली योग पे चले गई थी। कोई ज्ञान और योग है और सेवा करता ही नहीं है तो बा उस दिन ट्रेन में सेवा करो, पर्चे बांटो, ये करो, एक भी घर रहना नहीं चाहिए, ऐसा वैसा सारा सेवा उपर में
पहले
तो बोला रात भर याद में बैठ जाओ,
रात
में क्या जरूरत
है, कमाई होती है, नींद फिट जाती है।
अच्छा, ओम शांति।